आज हम 1931 के मंचूरिया संकट के कारणों और उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। 1921 ईस्वी के वाशिंगटन समझौते ने जापानी साम्राज्यवाद की प्रगति पर रोक लगा दिया था। महाशक्तियों ने चीन की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का वचन दिया था। जापान को इंग्लैंड की मित्रता से हाथ धोना पड़ा, जो उसकी अग्रसर नीति का आधार स्तंभ था। जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता निभाते हुए इससे संबंधित अन्य उत्तरदायित्व का भी पालन किया, पेरिस की संधि को भी अपनाया था और निशस्त्रीकरण में भी भाग लिया था। लंदन नौसेना संधि पर भी उसने हस्ताक्षर किए थे, किंतु इस सब सहयोग के बाद भी जापान अपनी मौलिक नीति को भूला नहीं था। उनकी नीति साम्राज्य विस्तार की थी। वस्तुतः जापानी साम्राज्यवाद के जीवन में यह ठहरो और स्थिति का अध्ययन करो का काल था। जब यह अध्ययन समाप्त हो गया तो जापानी साम्राज्यवाद पुनः जोश के साथ आरंभ हुआ। जापान दक्षिणी मंचूरिया में अपनी स्थिति मजबूत करने लगा तथा वाशिंगटन के प्रतिबंधों को तोड़कर अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ाने लगा। 1930 ईस्वी के बाद जापान की नीति में परिवर्तन आया। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण 1930 ईस्वी का विश्वव्यापी आर्थिक संकट था। इस समय जापान की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए जगह की जरूरत थी। विदेशों में प्रवास इस समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के प्रवास नियमों द्वारा जापानी प्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरे कारण, जापान की आर्थिक प्रगति भी इस समय तेजी से हो रही थी। उसके आर्थिक जीवन का आधार व्यापार हो गया था। जापान दिन प्रतिदिन विदेशी आयात निर्भर और निर्यात पर निर्भर होता जा रहा था। इस प्रकार विदेशी बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जापान के लिए जीवन एवं मृत्यु का प्रश्न बन चुका था। चीन और अमेरिका जापानी माल का आयात करते थे। आर्थिक संकट के कारण अमेरिका के निवासी जापानी रेशम को खरीदने में असमर्थ थे। दूसरी ओर चीन जापानी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहा था। इसके अतिरिक्त आर्थिक संकट के कारण प्रत्येक राज्य आर्थिक क्षेत्र में संरक्षण नीति का अनुसरण कर रहा था। इस सब का जापान के व्यापार पर घातक प्रभाव पड़ा। वह अपनी वस्तुओं की खपत के लिए विस्तृत आर्थिक क्षेत्र की आवश्यकता महसूस करने लगा, जहां उसे आयात कर और संरक्षण नीति का डर ना हो। बढ़ती हुई आबादी, कच्चे माल की प्राप्ति और आर्थिक संकट से बचने के लिए यह आवश्यक था कि जापान मंचूरिया के विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम करे। मंचूरिया में रेल लाइनों का ठेका जापान के पास था और जापान ने अपार धन लगाकर वहां कई तरह के उद्योगों का भी विकास किया था। इसके अतिरिक्त कई कारणों से भी मंचूरिया का महत्व जापान के लिए था। पहला कारण, मंचूरिया में लोहा, कोयला, तेल आदि खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। इनका जापानी उद्योगों के लिए विशेष महत्व था। दूसरा, मंचूरिया जापानी वस्तुओं के निर्यात के लिए उत्तम बाजार हो सकता था। तीसरा कारण, मंचूरिया में जापानियों को बसाकर बढ़ती हुई आबादी की समस्या को हल किया जा सकता था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सैनिक दृष्टि से मंचूरिया जापान के लिए बहुत ही महत्व रखता था। जापानी नेताओं का विश्वास था, रूस के संभावित आक्रमण के समय मंचूरिया बफर राज्य का काम करेगा। इसके अतिरिक्त साम्यवादियों के विचार प्रचार और कुमिंगतोंग का विरोध इस सरकार की परिस्थिति उत्पन्न कर रहे थे कि जापान मंचूरिया को स्वतंत्र राज्य के रूप में खड़ा करना चाहता था। दूसरी ओर चीन मंचूरिया को अपने साथ पूरी तरह सम्मिलित कर अपनी राजनीतिक एकता पूरा करने का इरादा रखता था। अतः मंचूरिया को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ। चीनी राष्ट्रवादी मंचूरिया को अपनी रक्षा की प्रथम पंक्ति मानते थे और जापानी सरकार उसे जीवनदायिनी संपर्क रेखा कहती थी। चीन की दृष्टि में मंचूरिया चीन का अन्नागार था। उधर जापान मंचूरिया में अपने विशेष हितों का दावा कर रहा था। दक्षिणी मंचूरिया रेलवे कंपनी पर भी जापान का नियंत्रण था। चीन मंचूरिया पर अधिकार करना चाहता था, इससे जापान के हितों पर खतरा उपस्थित हो गया। चीन ने समानांतर रेलवे की पटरियां बिछाने की योजना प्रस्तुत की। जापान ने इसका विरोध किया। जापान की एक और शिकायत थी, चीनी ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए दक्षिण मंचूरिया रेलवे कंपनी से जो कर्ज लिया था वह अभी तक वापस नहीं कर पाया था। दक्षिणी मंचूरिया रेलवे कंपनी के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर भी झंझट शुरू हुआ। इसके अलावा चीन के अधिकारी जापान की जमीन इजारा लगाने के मार्ग में बाधा उपस्थित करने लगे और दक्षिण मंचूरिया में जापानी नागरिकों के भ्रमण आवास और व्यापार के अधिकार पर नियंत्रण लगाने लगे। जापान इसे अपने आंतरिक क्षेत्रीय अधिकार का अतिक्रमण मानता था। इन सभी बातों के साथ साथ मंचूरिया में भी चीनी राष्ट्रवाद काफी तीव्र हो गया था। एक जापानी अफसर की हत्या चीनी सिपाहियों ने कर दी। इसके विरुद्ध जापान में काफी प्रतिक्रिया हुई। जापानी फौज इसका बदला लेने के लिए बेसब्र हो गई। इस समय जापान की राजनीति में साम्राज्यवादियों का बोलबाला था। 1928 ईस्वी में मंचूरिया को चीन में मिला लिया गया था। इससे जापान के सैनिक तथा असैनिक अधिकारी असंतुष्ट थे। सैनिक अधिकारी मंचूरिया पर आक्रमण कर उसे चीन से छीनना चाहते थे। उन्हें एक बहाना चाहिए था जो उन्हें शीघ्र ही मिल गया। 18-19 सितंबर 1931 ईस्वी को दक्षिणी मंचूरिया रेलवे के नज़दीक मुकडेन नामक स्थान में बम विस्फोट हुआ। जापान ने चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और उनसे उनके हथियार छीन लिए गए। मुकडेन के उत्तर स्थित चीनी शहरों पर भी कब्जा कर लिया गया। संपूर्ण मंचूरिया पर कब्जा करके जापान ने मांचूकुओ नामक एक कठपुतली राज्य स्थापित किया। यह सब काम 1932 ईस्वी तक समाप्त हो गया। जापानी आक्रमण का समाचार सुनकर विश्व के राष्ट्र स्तब्ध रह गए। मंचूरिया के साथ जापान का व्यवहार अत्याचारपूर्ण था। राष्ट्रसंघ की अपील के बावजूद भी जापान ने मंचूरिया से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। जापान के इस व्यवहार से स्पष्ट हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार के राजनीतिज्ञों ने आक्रामक युद्धों को रोकने के लिए जो पाबंदी लगाई थी वह समाप्त हो गया। मंचूरिया कांड केवल राष्ट्रसंघ के विधान का ही उल्लंघन नहीं था, बल्कि इससे पेरिस संधि और वाशिंगटन सम्मेलन में की गई 9 राष्ट्रों की संधि का भी घोर अतिक्रमण हुआ था। जापान ने अपने कार्य को आक्रामक न बताकर चीनी लुटेरों से जापानियों के जीवन और जायदाद को बचाने वाली पुलिस कार्रवाई बताया, लेकिन राष्ट्रसंघ द्वारा गठित लिटन आयोग ने इसे नग्न आक्रमण का कार्य बतलाया। फिर भी बड़े राष्ट्रों ने जापान का विरोध नहीं किया। परिणाम एवं महत्व। प्रोफेसर ईएच कार का मत है कि मंचूरिया संकट प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। वाशिंगटन सम्मेलन द्वारा जिस संभावना को टालने का प्रयास किया गया था वह टली नहीं और प्रशांत महासागर में शक्ति संघर्ष पुनः आरंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार आक्रमणात्मक कार्रवाई का सहारा लिया गया था और इसमें आक्रमणकारी को पूरी सहायता मिली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया के राष्ट्रों ने मिलकर आक्रमणकारी का मुकाबला नहीं किया था। वे जापान के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उस समय संपूर्ण संसार आर्थिक संकट के चंगुल में फंस चुका था। जापान को कोई दंड नहीं दिया गया और उसके अपराध माफ कर दिए गए, परंतु इसका दूरगामी परिणाम अत्यंत भयंकर साबित हुआ। एक अपराधी को क्षमा करने का अर्थ दूसरे अपराधी को प्रोत्साहित करना होता है और अंततः इसका परिणाम भी यही हुआ। मंचूरिया कांड ने घटनाओं की उस श्रृंखला का सूत्रपात किया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। इथोपिया कांड, चेकोस्लोवाकिया कांड, पोलित कांड आदि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को मंचूरिया कांड से प्रेरणा मिली थी। मंचूरिया कांड का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि सर्वाधिकारवादी युद्ध प्रिय राष्ट्रों के नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून की मर्यादा को भंग करने की प्रेरणा मिली। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय लूट और अराजकता का एक युग शुरू हुआ। जापान को विश्व शांति का शत्रु समझा जाने लगा। विश्व पुनः शक्तिशाली राजनीतिक चंगुल में फंस गया। सभी राष्ट्र शक्ति के लिए आपस में संघर्ष करने लगे। यह घटना जापान की मनोदशा का चाप मापक यंत्र साबित हुई। जापानी नेताओं की आवाज़ में हिटलर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। मंचूरिया कांड के बाद यूरोप में जर्मनी और इटली तथा एशिया में जापान बहुत ही महत्वाकांक्षी राष्ट्र के रूप में अवतरित हुए। सर्वत्र सर्वाधिकारवाद की लहर दौड़ गई। जापान की राजनीति में सैन्यवादियों का बोलबाला कायम हुआ। जापान ने प्रगति की नीति अपनाई और सुदूर पूर्व में शांति और का संरक्षक बनने की इच्छा प्रकट की। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने अपने विशिष्ट स्वार्थ और सार्वभौम स्वार्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह एशिया के लिए जापान का मुनरो सिद्धांत था। वाशिंगटन सम्मेलन के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय नौसेना सहयोग का कार्यक्रम आरंभ हुआ था उसे अब तिलांजलि दे दी गई। नौसेना का दौर पुनः आरंभ हुआ। जापान ने एशिया एशिया वालों के लिए का नारा बुलंद किया। सर्वाधिकारवादियों का आतंक इतना अधिक बढ़ गया कि उनके समक्ष प्रजातंत्रवादी राष्ट्र एक एक कर हार रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय तनाव बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था। जापान साम्राज्यवाद के उग्र रूप के कारण अमेरिका को अपने अकेलेपन की नीति का परित्याग करना पड़ा। जापान का मुनरो सिद्धांत अमेरिका का चीन में खुले द्वार की नीति का खंडन करता था, इसलिए जापान का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने अपने नौसेना में वृद्धि करना शुरू किया। यह अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने अंत में द्वितीय विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया।